चलो हम बात करते हैं। الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودة فی القربی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمین، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. तो आज की क्लास जो है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस के साथ, थोड़े शोर के साथ आपको सुननी पड़ेगी, क्योंकि घर के अंदर कुछ काम काज भी चल रहा है। पीठ की आपको आवाजें आ रही होंगी, उसके अलावा जरा सेहत का भी मसला चल रहा है और सफर तो भी जारी है। तो बहरहाल इन सब चीजों के साथ ही आज की क्लास अल्लाह ताला करवा दे। रिश्तेदारियां निभाना का मौजू चल रहा है, उमूर खानदारी में हुस्न इंतजाम, जो हमारे हजरत रहमतुल्ला अलैह के सिलसिला दुरूस में से एक दर्स है। तो पिछले हफ्ते इसके ऊपर क्लास हुई थी, जिसमें हमने आखिरी मौजू खाविंद से मुतालिक पढ़ा था कि खाविंद की बेहतरीन दोस्त बने। तो उसमें फिर हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने नबी अलैहि सलातो वसलाम की और हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की मिसाल बयान फरमाई थी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये इंतहाई एक कठिन वक्त आया, एक इंतहाई बल्कि सबसे बड़ा बोझ डाला गया, जिस बोझ को उठाने से पहाड़ों ने भी इनकार कर दिया था, जमीन और आसमान ने भी इनकार कर दिया था, वो बोझ नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह ताला ने डाला, यानी वही का, हिदायत का, हिदायत नामे का बोझ। तो उसके बाद फिर नबी अलैहिस्सलाम की जो कैफियात हुई वो हम सब काफी शाफी उसके बारे में जानते ही हैं, यानी पढ़ चुके हैं। हकीकी तो हम इल्म नहीं हासिल कर सकते जैसा आप सल्लम के ऊपर गुजरी होगी, लेकिन किताबों से और बातों से जितना समझ में आ सकता है। तो उस हालत में नबी अलैहिस्सलाम कहाँ गए? अपनी बीवी के पास गए, हजरत हजरत कुबरा रज़ियल्लाहु के पास गए, और उन्होंने भी नबी अलैहिस्सलाम को कैसे वेलकम किया? एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कैफियत को नलिफाई नहीं किया या इसको डिसरिगार्ड नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं कहा कि बस खामखई आप तो ऐसी बातें करते रहते हैं और ये तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, या बस ऐसे ही आपको गुमान हो गया होगा, आप तो वहम है, वगैरह वगैरह। इस तरह की हजार बातें इंसान कर सकता है, बात को आई गई आई क्या कहते हैं वो आया क्या कहते हैं आई गई करने के लिए, है वो डिसमिस करने के लिए, है हमारे तो इंग्लू जुबान है ना, इंग्लिश प्लस उर्दू, तो उर्दू का कोई लफ्ज समझ में नहीं याद आता तो अंग्रेजी का लफ्ज आ ही जाता है। तो डिसमिस करने के लिए हजार बातें इंसान कर सकता है, लेकिन हज़रत ने ऐसी कोई भी बात नहीं करी। ठीक है, तो हमें भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, बंदे की सिचुएशन को अप्रिशिएट करना चाहिए। इवन अगर आप उससे एग्री नहीं भी करते हो, इवन अगर आप उससे एग्री नहीं भी करते, क्योंकि जाहिर सी बात है हर बंदा जब ऐसी सिचुएशन में आता है तो हर बंदा तो नबी अलैहिस्सलाम जैसा नहीं होता, हर बंदा तो सादिक और अमीन नहीं होता। ठीक है, तो आपका शौहर जो है वो हो सकता है वो किसी गलत फहमी का शिकार हो सकता है वो किसी वहम का शिकार हो, उसको कुछ ऐसी शक्लें नजर आ गई हो जो कि वाकई में एग्जिस्ट नहीं करती थी। ठीक है, लेकिन जब ऐसी कैफियत में कोई मुब्तला होता है तो उसको जो है ना वो सुनना चाहिए और उसके साथ जो है वो यानी हमदर्दी का मामला करना चाहिए, और उसको उस वक्त जो है ना वो डिसमिस कर देना और बिल्कुल इनकार कर देना ये मुनासिब नहीं होता, खुसूसन जब वो शख्स जो है वो किसी आला मर्तबे का हो, बुलंद मर्तबे को। ठीक है, बच्चों के साथ कभी हम ऐसा करते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चे के जो मामलात होते हैं वो वालदैन को अच्छी तरह से अंदाजा होते हैं कि भाई हाँ ये कहाँ से होकर आया होगा, ये किस चीज के बारे में। जैसे कॉकरोच से डर गई मेरी, ठीक है, तो अब कॉकरोच से डर गई है तो उस वक्त जो है वो कॉकरोच से डरने को थोड़ा सा डिसमिस करना पड़ेगा, ठीक है, उसका भी एक तरीका और सलीका होता है। लेकिन बड़ों के साथ तो ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, तो हम तो बड़ों के साथ ऐसा करना शुरू कर देते हैं, खुसूसन खाविंद जो है उसको अल्लाह ताला ने एक मुकाम दिया है, तो उसके साथ तो ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। तो हजरत कुबरा ताला ने नबी अलैहिस्सलाम की खूबियां बयान फरमानी शुरू करी, ठीक है, तो उसके बारे में बात हुई थी कि भाई खूबियां देखती थी, उनको याद रखती थी, तभी तो बयान कर सकती ना। अगर खूबियां ना देखती बल्कि खामियां देखती तो फिर ऐसे मौके पर खूबियां कैसे बयान कर पाती। तो ये भी हमारे याद रखने की बात है कि भाई खूबियां देखना चाहिए, तलाश करना चाहिए, ढूंढना चाहिए, ताकि मौका पड़ने पर उनको बयान करना भी आसान हो सके। हर बंदे के अंदर कोई ना कोई खूबी तो होती ही है। तो एक लतीफा बचपन में पढ़ा था कि एक साहब जो है वो बहुत ही ज्यादा बुरे अखलाक वाले थे, और जो है वो हर एक को तंग करते रहते थे, तो सारे मोहल्ले वाले उनसे बहुत परेशान थे। तो जब उनका इंतकाल हो गया तो अब सारे लोग जो है वो बैठे हुए हैं, उनके जो भी ताजियत के लोग आते हैं तो अब सब बैठे हुए हैं, लेकिन अब उस मौके पर जो मरने वाला होता है उसकी खूबियां बयान की जाती हैं, उसकी अच्छाइयां बयान की जाती हैं, तो अब किसी को उनकी कोई अच्छाई नजर ही नहीं आती थी, कोई याद ही नहीं थी किसी को अच्छाई कभी कभी उनसे कोई अच्छा काम देखा भी हो। तो उस वक्त जो है ना वो मोहल्ले का जो हजाम था ना, नाई जो होता है, तो उसने जो है ना वो कहा के मरहूम के बाल बहुत नरम थे, ठीक है, मरहूम के बाल बहुत नरम थे, उनको काटना बड़ा आसान था, ठीक है। तो भाई कोई खूबी नहीं है तो बनाने वाला तो कोई कोई ना कोई खूबी बना सकता है, झूठ बोले बगैर भी कुछ ना कुछ खूबी जो है बनाई जा सकती है। तो हम जिसके साथ निकाह होता है, शादी होती है, तो कुछ ना कुछ तो देख दाग करके करी होगी ना शादी, ऐसे ही बस उठा करके शादी कर ली थी या कर ली थी, तो कुछ ना कुछ वो भी उसी वक्त की याद कर ले जब शादी करी थी। अच्छा, तो नबी अलैहिस्सलाम को फिर सैयदुल ने नेक्स्ट काम किया किया कि जो अपनी जुबान से बातें कही थी, ठीक है, तो उनको मजीद कंफर्म करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए, ठीक है, यानी मजीद जमाने के लिए, फिर सैयदुल कुबरा था नबी अलैहिस्सलाम को वरका बिन नौफिल के पास लेके गए, ठीक है। वही हजरत फरमाते हैं कि फिर यही नहीं कि यहीं तक ही की, बल्कि इससे अगले दिन उन्होंने एक अगला कदम उठाया। वो क्या था कि वरका बिन नौफिल उनके एक रिश्तेदार थे और वो पहली किताबों के आलिम थे, यानी तौरात और इंजील वगैरह के आलिम थे। वो नबी अलैहिस्सलाम को लेकर उनके पास गए और उनके पास जाकर कहा कि आप सुनिए कि आपके भाई के बेटे क्या कहते हैं, ठीक है, यानी चूंकि कुरैश पूरा कबीला था ना, और ये कुरैश के ही लोग थे हजरत सैयदुल कुबरा ताला भी, तो वरका बिन नौफिल भी एक तरह से कजन लगते थे नबी अलैहिस्सलाम के वालिद के, ठीक है, दूर के कजन लगते थे, कोई फोर्थ फिफ्थ सिक्स कजन होंगे, तो इस तरह से भाई के बेटे कहा। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या हुआ, तो नबी अलैहिस्सलाम ने पूरा वाकया जो गारे हिरा में पेश आया था उनको सुनाया। तो उन्होंने सुनकर कहा कि ये तो वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहि सलाम के पास आता था और अब ये आपके पास भी है, ठीक है। जब ये सारी दास्तान सुनी कि वो आए, ऐसी उनकी शक्ल सूरत थी और ऐसा नूर था, और फिर उन्होंने ऐसे बात करी और ऐसे दबाया और ऐसे फिर भेजा मुझे और ये कहा और ये कहा, तो वो फौरन पहचान गए, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो तौरात और इंजील के आलम थे ना, तो उनको ये सारी निशानियां पहले से मालूम थी, ठीक है, तौरात और इंजील के अंदर ये सारी बातें पहले से लिखी हुई हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी के सारे अहवाल, बहुत सारे अहवाल अपने पिछले नबियों को पहले से बताए हुए थे, और वो सारी तफसीलात जो हैं वो तौरात और इंजील के अंदर महफूज हैं, आज भी महफूज है, ठीक है। अब ये छुपाते हैं उनको, ये जो उनके आलिम हैं, जो झूठे और काफिर आलिम हैं, वो छुपाते हैं, लोगों को बताते नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तफसीलात उनके पास मौजूद नहीं है, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि सारी तफसीलात उनके पास अभी तक मौजूद हैं, ये जितने आपको वेटिकन सिटी के अंदर नजर आते हैं, या जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं या ज्यूज हैं, दे नो एवरीथिंग, इनको सब पता है कि नबी अलैहिस्सलाम कौन थे, कब आए, उनके सहाबा कौन थे, कब आए, कैसे थे, क्या होने वाला है, हत्ता के 1400 साल गुजरने के बाद क्या कुछ होने वाला है, ये सारी तफसीलात इनके पास मौजूद है। तो जिस तरह हम दज्जाल के वाकयात हदीस में पढ़ते हैं, और जो है मलहमतुल कुबरा के वाकयात हदीस में पढ़ते हैं कि ऐसा होगा और फिर दावतुल अर्ज होगा, ये बातें भी उनके पास मौजूद है, ठीक है, कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे वगैरह। तो ये सारा इल्म जो भी आलिम है उसके पास होता है, तो उनके पास भी था, तो वो समझ गए कि ये जो थे वही फरिश्ते थे जो कि पिछले अंबिया के पास आते थे। तो फिर उन्होंने कहा कि हमारी किताबों में ये लिखा हुआ है, यानी देखिए ये भी लिखा हुआ है कि एक वक्त आएगा कि आपको आपके शहर से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये सुनकर फरमाया कि अवा मुखरिजिया, कि क्या मुझे निकाल दिया जाएगा, ये लोग जो है मुझे निकाल देंगे, यानी ये तो मेरे ऊपर जान छिड़कते हैं, ये तो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। कौन सी मोहब्बत करते थे? खानदानी मोहब्बत करते थे ना, ये कुरैश है नबी अलैहिस्सलाम से खानदानी नस्बत से शदीद मोहब्बत करते थे, और अखलाकियात भी नबी अलैहिस्सलाम की इतनी अच्छी थी कि उसकी वजह से भी बहुत मोहब्बत करते थे, ठीक है। तो बड़ी सलाहियतों वाला मानते थे नबी अलैहिस्सलाम को। फिर चूंकि आप सरसरम यतीम भी थे, तो यतीम के साथ तो और भी ज्यादा जो है वो अपने खानदान का यतीम थे ना, बहुत ही गरीबी यतीम और बड़े खानदान के थे, तो इन सब नस्बतों से जो है वो बहुत ज्यादा मोहब्बतें नबी अलैहिस्सलाम को की जाती थी, ठीक है। लेकिन यानी इन मोहब्बतों की वजह से नबी अलैहिस्सलाम तस्वुर भी नहीं कर सकते थे कि इनको निकाल दिया जाएगा रैश के शहर में से, ठीक है। लेकिन हुआ यही कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर अल्लाह की नस्बत से करना शुरू किया, ठीक है, अल्लाह की नस्बत से जब बात करनी शुरू करी, तब इन लोगों को बुरी लगनी शुरू हुई, ठीक है, और फिर वो बढ़ता गया हद तक एक दुश्मनी बन गई, और फिर बिलाखिर जो है वो नबी अलैहिस्सलाम को उन्होंने कत्ल करने की भी कभी फैसला कर लिया कि अगर काम नहीं छोड़ोगे तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। फिर नबी अलैहिस्सलाम को निकलना पड़ा वहां से, ठीक है, वरना इन्होंने कोई धक्के दे के नबी अलैहिस्सलाम को बाहर नहीं निकाला था, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि आप यहां से चले जाएं, बल्कि इन्होंने तो ये कहा था कि आप अपना काम छोड़ दें, आप ये जो है ना वो जैसे हम कहते हैं ना हमारे काम में दखल देना छोड़ दें, हमारे इबादतों में और हमारे तौर तरीकों में मीख निकालना छोड़ दें, इन्होंने ये कहा था नबी अलैहिस्सलाम को, इन्होंने ये नहीं कहा था कि आप निकल जाएं यहाँ से, हम आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते, नहीं ये नहीं कहा था उन्होंने, बल्कि उन्होंने कहा था आप अपना काम छोड़ दें, हम आपके दोबारा से दोस्त बन जाएंगे, हम आपको दोबारा से गले लगा लेंगे, हम आपके साथ फिर से जो है वो पार्टी करना शुरू कर देंगे, जैसे हम कहते हैं ना तुम जो है ये मौलवी बनना शुरू कर दो, ये क्या तुम जो है वो हमें हलाल हराम के बोलते रहते हो, क्या तुम जो है वो हमें जो है ना वो ये कि ये गलत कर रहे हो, हम वो गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो, ये सब करना छोड़ दो, अपनी इबादत करो जितनी करनी है तुम्हें, अपनी मर्जी से जितनी इबादत करने चाहते हो करो, ठीक है, बस हमें रोकना जो है ना, हमें रोकना टोकना तुम छोड़ दो, ठीक है। तो कुरैश भी नबी अलैहिस्सलाम यही कहते थे। अच्छा ये कह रही है कि वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, तो किसी और को भी ब्रेक हो रही है या सिर्फ इनको ब्रेक हो रही है, कोई तो बता सकता है, किसी और को भी ब्रेक मिल रही है मेरी वॉइस, तो फिर कुछ करें। अच्छा तो बाकी लोगों को क्लियर है, दो लोगों ने तो मुख्तलिफ लोगों से बताया, तो अब आपके ही तरफ का कोई मसला होगा, ठीक है। तो बहरहाल तो ये तो फिर हम साइड में ये चीजें भी डालते रहते हैं कि भाई हमारा भी तो यही मसला होता है ना कि हम भी जो है ना वो लोगों के या तो दूसरों के दीन पर एतराज करते हैं, और जहां कोई हमारे दीन के अंदर जो है वो हमारी इसलाह करने की कोशिश शुरू कर दे तो हम जो है वो उसी के खिलाफ हो जाते हैं, बल्कि और भी पता नहीं क्या क्या कहना शुरू हो जाते हैं उसको, ठीक है। तो उन लोगों ने भी यही काम किया था। तो बहरहाल तो क्या मुझे निकाल दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये तो अल्लाह के रास्ते में होता ही है, अगर मैं उस वक्त जिंदा हुआ तो मैं आपकी उस वक्त मदद करूंगा। ठीक है, तो ये उसूल है कि जब भी कोई शख्स इंसान को उसके नफ्स के खिलाफ बात कोई करता है ना, ठीक है, तो बुरी लगती है। ठीक है, अल्लाह और नफ्स ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ठीक है, अल्लाह के मुकाबले पर नफ्स है और नफ्स के मुकाबले पर अल्लाह है। ठीक है, तो जब अल्लाह के हक में कोई बात की जाएगी कि भाई अल्लाह का हक ये है, अल्लाह का हक ये है, ठीक है, तो नफ्स को बुरा लगेगा। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर आप जो है वो किसी बहू को कहना शुरू कर दें कि सास का हक ये है, सास का हक ये है, सास का हक ये है, तो बहू को बुरा नहीं लगेगा, लगेगा ना, क्योंकि बहू और सास की आपस में चलती रहती है आम तौर पर, उमूमी तौर पर, हर जगह ऐसा नहीं होता लेकिन ज्यादातर ऐसा ही होता है। ठीक है, उधर जो है वो आप सास सास के सामने बैठ करके बहू के जो है वो हुकूक बयान करना शुरू कर दें, ठीक है, तो क्या ख्याल है फिर उसके बाद क्या होगा कि सास को बुरी लगनी शुरू हो जाएगी आपकी बात है। हत्ता के सास का सगा बेटा जो होता है ना वो बैठ करके अपनी बीवी के जो है वो हुकूक बयान करना शुरू कर दे तो सास को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, तो हत्ता के वो अपने बेटे के खिलाफ हो जाती है कि ये तो बीवी का गुलाम हो गया है, ये तो ये हो गया है, ये तो वो हो गया है, इसमें तो बीवी के दाम कुछ नजर ही नहीं आता। ठीक है ना, तो जो दो दुश्मन होते हैं ना तो उनमें से किसी एक के सामने दूसरे की खूबी बयान की जाए या हुकूक बयान किया जाए तो उसको बुरा लगता है। यही मामला अल्लाह और नफ्स का भी है। ठीक है, तो जब भी आप अल्लाह की बात करते हैं ना तो फिर इंसानों के नफ्स को बुरा लगता है। ठीक है, कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद ये है कि जो सही दीन की सही तरीके से मेहनत करने वाले लोग हैं, ठीक है, उनको ये बात याद रखनी चाहिए कि जब वो दीन का काम करेंगे तो उनको हार नहीं पहनाए जाएंगे, उनको हार नहीं पहनाए जाएंगे, उनको लड्डू पेड़े नहीं खिलाए जाएंगे। ठीक है ना, एक आध लोग हैं जो कि उनकी बात मान लेंगे, ठीक है, लेकिन बाकी लोग है ना वो उनके खिलाफ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अल्लाह के रास्ते में होता ही है, ये हमेशा से होता आ रहा है, ये नबी अलैहिस्सलाम के साथ भी हुआ और ये नबी अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलने वाले हर शख्स के साथ होता है। लेकिन एक बात और भी हमें याद रखनी जरूरी है, जब इस जिसने शुरू में बात कह दी थी कि जो कि सही दीन पर सही तरीके से काम करता है उसके साथ ये होता ही है। ठीक है, तो हर बंदा दीन का जो काम कर रहा होता है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो पहले सही तरीका सीख करके जो काम करेगा तो उसके फिर लोग खिलाफ होंगे। हम अक्सर जो है वो गलत तरीके से काम कर रहे होते हैं तो लोग हमारे खिलाफ जो है ना वो हमारे गलत तरीके की वजह से हो रहे होते हैं। ठीक है, वो दीन की वजह से हमारे खिलाफ हो रहे होते हैं बल्कि हमारे गलत तरीके की वजह से हमारे खिलाफ हो रहे होते हैं। तो बस तरीका सीख लें और नियत अल्लाह की रजा की खातिर करें, फिर उसके बाद अपना काम करें। तो बहरहाल, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो अल्लाह के रास्ते में होता ही है और अगर मैं इस उस वक्त जिंदा हुआ तो मैं आपकी उस वक्त मदद करूंगा। सही बुखारी के अंदर यह हदीस मक़बूल है। इसलिए बाज़ मुहद्दिसीन ने लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले वरका बिन नौफिल भी थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर मैं उस वक्त हुआ तो आपकी मदद करूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म नहीं हुआ था कि आप लोगों को दीन की तरफ बुलाएं। अभी क्या हुआ था, जब नबी अलैहिस्सलाम 40 साल की उम्र पहुंचे थे और गारे हिरा के अंदर आप के ऊपर वही नाजिल हुई थी, तो उस वक्त क्या हुक्म हुआ था, उस वक्त हुक्म हुआ था इकरा, पढ़िए। ठीक है ना, इकरा वरब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम, ये हुक्म हुआ था नबी अलैहिस्सलाम को कि खुद पढ़िए। अभी ये हुक्म नहीं हुआ था कि दूसरों को पढ़ाइए, अभी ये हुक्म नहीं हुआ था कि दूसरों को जो है वो डराइए, अभी ये हुक्म नहीं हुआ था कि दूसरों को जो है वो अल्लाह की तरफ बुलाइए, नहीं ये तो हुक्म हुआ ही नहीं था। ठीक है, तो वरका बिन नौफिल जो है तो उन्होंने ऐसी बात क्यों कही कि जब आपको हुक्म होगा तब जो है मैं आपके ऊपर मान लाऊंगा, अगर उस वक्त मैं हुआ तो मैं आपकी मदद करूंगा। क्योंकि अभी तो नबी अलैहिस्सलाम को खुद नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। ठीक है, जब नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ तब उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों को बुलाना शुरू किया, तब लोगों के ऊपर जो है वो ये वाजिब हो गया कि नबी अलैहिस्सलाम की बात माने। ठीक है, वरका बिन नौफल का उस वक्त इंतकाल हो गया था। ठीक है, तो अभी तो उन्होंने गोया कि एक फ्यूचर कमिटमेंट करी थी कि जब आप बुलाएंगे और लोग आपके खिलाफ होंगे तब मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है, तो उस वक्त तक तो जिंदगी ने मोहलत नहीं दी, अल्लाह ताला ने उनको मोहलत ही नहीं दी, लेकिन चूंकि दिल की नीयत अल्लाह ताला के यहाँ अहम होती है तो इनके दिन की इनके दिल की नीयत की वजह से मुहद्दिसीन ने लिखा कि ये सबसे पहले ईमान लाने वालों में से थे। ठीक है, देखिए कि बीवी ने खुद भी इखलाकी मदद करी, मदद दी यानी साइकोलॉजिकल सपोर्ट किया। ठीक है, और फिर बीवी उनको एक ऐसे बंदे के पास ले गई जिसने उनको पूरी बात समझा दी। यानी बीवी के पास क्या था, जज्बात थे, अखलाक थे। ठीक है, क्या था बीवी के पास, जज्बात थे, अखलाक थे। तो जो उनके पास था उन्होंने उसके साथ अपने शौहर की मदद करी, और जो उनके पास नहीं था तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उनको वहां लेके गई जिनके पास वो था। क्या था भाई, जल्दी से बताएं कोई, जो खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास नहीं था और वरका बिन नौफल के पास था। जी बिल्कुल सही जवाब दिया, इल्म। ठीक है, इल्म उनके पास नहीं था आसमानी किताबों का, वो वरका बिन नौफल के पास था, तो वरका बिन नौफल के पास लेके गई। ठीक है ना, तो क्या इससे सबक मिलता है हमें कि वी आर सपोज टू डू वॉट वी आर केपेबल ऑफ डूइंग, जो हमारे पास है हम वो करें ना। हम रोते रहते हैं उस चीज के बारे में जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास होता है वो हम नहीं कर रहे होते, राइट? जो हमारे पास होता है वो हम नहीं कर रहे होते, उसको हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, उससे हम फायदा नहीं उठा रहे होते, उसकी हम कदर नहीं कर रहे होते, जो है। ठीक है, और सारी दुनिया का ढिंढोरा पीट रहे होते हैं। इसी को कहते हैं उर्दू के अंदर एक और भी मुहावरा है इसके लिए ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, राइट? घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी जो घर के अंदर आपको मुर्ग मुसल्लम मौजूद है तो उसकी तो आप कदर नहीं कर रहे, उसको तो आपने दाल की जैसी इज्जत दी हुई है। ठीक है, और दूर के ढोल सुहाने, दूर के जो ढोल है ना, जो आपकी पहुंच से बाहर हैं, वो आपको बड़े अच्छे लग रहे हैं, राइट? ये एक ऐसा एटीट्यूड है जो के सारे नाकाम लोगों का यही एटीट्यूड है। सारे नाकाम लोग जो होते हैं ना दुनिया और आखिरत के नाकाम, उनका यही एटीट्यूड होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर, दूर का ढोल सुहाने। ठीक है ना, जो अल्लाह ताला ने नेमत दी होती है ना उसकी कदर नहीं करते, और जो दूसरों के पास नेमतें होती है ना उनके जो है ना वो गीत गाते रहते हैं बस, उनके ऊपर फोकस रहते हैं बस। ठीक है, ये हमारा भी मसला यही है, और यही जो है वो कुफारे मक्का का भी यही मसला था, कुफारे मक्का का भी यही मसला था। नबी अलैहिस्सलाम उनके लिए क्या थे, बेअदबी, बेशक अल्फाज के अंदर बेअदबी है लेकिन बात समझाने की खातिर खाली। ठीक है, बात समझाने की खातिर खाली, नबी अलैहिस्सलाम को उन लोगों ने नाऊज बिल्ला घर की मुर्गी समझ रखा था। ठीक है, घर की मुर्गी समझ रखा था, ये तो हमारे घर का बच्चा है, ये तो हमारे खानदान का बच्चा है, ये तो जो है वो ऐसा है, ये तो वह, ये कौन होता है हमें बताने वाला। ठीक है, और दूर के ढोल सुहाने जा करके मदीना मुनव्वरा जा करके वहां के यहूदियों से पूछ करके आ रहे हैं कि तुम बताओ कि नबी कैसा होता है, तुम बताओ कि वही कैसी होती है, तुम बताओ कि जो है ना वो क्या निशानियां होती हैं, जिन निशानियों को हम जो है वो कन्फर्म चेक करें कि इनके पास वो निशानियां हैं कि नहीं है। वो जो मदीना मुनव्वरा 400 किलोमीटर दूर लोग बैठे हुए हैं ना, वो इनको ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, वो इनको जो है वो इल्म वाले लग रहे हैं। ठीक है, और जो अपने घर के अंदर सारी दलीलें पेश कर रहे हैं, अपनी जात को दलील के तौर पे पेश कर रहे हैं, और उसके अलावा जो है वो मौजजात पेश कर रहे हैं, उनकी जो है वो कदर नहीं कर रहे। यही हमारा भी हाल है, राइट? हमारे घर का बच्चा कोई उठ करके हमें दीन के बारे में कुछ बताए तो हमें जो है वो मुतकब्बिर लगना शुरू हो जाता है, वो तकब्बुर करने वाला लगना शुरू हो जाता है, और पता नहीं क्या क्या उसको हम सलवा, हालांकि दलील के साथ बात कर रहा है, राइट, कुरान और हदीस के साथ बात कर रहा है या अकली दलील के साथ बात कर रहा है, लेकिन नहीं, उसकी तो सुननी नहीं है, उसकी तो माननी नहीं है। बाकी जो है वो YouTube के ऊपर 10,000 वीडियोस देख देख करके जो है वो दीन सीखने की कोशिश करेंगे अपने तौर पर, राइट। तो ये क्या है, ये यही है मसला, घर की मुर्गी दाल बराबर, दूर के ढोल सुहाने। ये नाकाम लोग होते हैं, ये दुनिया में भी नाकाम रहते हैं, ऐसे जो दुनिया के मामलात में ये मामला करते हैं ना, वो दुनिया में नाकाम रहते हैं, और जो दीन के मामलात में ऐसा मामला करते हैं वो दीन में नाकाम रहते हैं। कामयाब कौन होता है, कामयाब कौन होता है, ये आप बताएंगे ताकि पता चले ना कितनी समझ में आई ये बात। कामयाब कौन होता है, जी आप बताएंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। कामयाब लोग कौन होते हैं, किसकी कदर करने वाले, दूर के ढोलों की कदर करने वाले कामयाब होते हैं क्या? नहीं, आपकी डायरेक्ट मैसेज में ना लिखा करें ताकि दूसरे भी पढ़ सके ना, जो अल्लाह की दी हुई नेमतों की कदर करते हैं, नेमतों की कदर करने वाले, जो अपने पास मौजूद नेमत है उसकी कदर करने वाले, जो नेमत मौजूद है उसकी कदर करने वाले, उसको घर की मुर्गी की तरह ट्रीट नहीं करने वाले, ठीक है, वो कामयाब होते हैं, ठीक है। तो हदीया जो कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा था, सबसे ज्यादा कामयाब खातून थी, सबसे ज्यादा कामयाब खातून, ठीक है ना, दुनिया की सबसे ज्यादा कामयाब खातून। क्यों? इसलिए कि ये नबी तो थी नहीं, कोई औरत नबी बनी नहीं, ठीक है ना, ये अगर कोई और नबी औरत होती तो वो इनसे ज्यादा कामयाब होती, ठीक है, लेकिन कोई औरत नबी थी ही नहीं, तो अब कौन रह गया, उम्मत ही रह गए। उम्मतियों में सबसे बढ़ करके कौन सी कामयाब उम्मती हो सकती है, जो कि अल्लाह के महबूब के ऊपर ईमान लाने वाली, अल्लाह के महबूब की मदद करने वाली, ठीक है। तो इन्होंने इस उसूल को समझा, इसके ऊपर अमल किया, ये दुनिया जहान की सबसे ज्यादा कामयाब खातून बन गई, ठीक है, सेकेंड टू नन, सेकेंड टू नन, ठीक है, यानी इनसे बढ़ करके कोई भी दूसरा नहीं। तो अगर बीवी खाव के, अच्छा तो इन्होंने क्या किया कि अपने पास जो था उसकी कदर करी, उससे नबी अलैहिस्सलाम को सपोर्ट किया, और जो अपने पास नहीं था उसके लिए नबी अलैहिस्सलाम को उसी के पास ले गई। अगर बीवी खाविंद के मसले को शेयर करें, अच्छा इसमें एक और भी बहुत अहम बात है कि इल्म नहीं था तो इस बात को इन्होंने एक्नॉलेज किया कि मेरे पास इल्म नहीं है, ठीक है ना, इन्होंने एक्नॉलेज किया ना इस बात को कि मेरे पास वही का इल्म नहीं है, फरिश्तों का इल्म नहीं है, ठीक है, नबुवत का इल्म नहीं है। ये तो नहीं कहा कि मैं तो बीवी हूं और मेरे अखलाक भी बहुत अच्छे हैं, मुझे आपकी खूबियां भी बहुत सारी पता हैं, तो मैंने जो है वो आपकी खूबियां तो इतनी गिनवाई हैं, अब जो है ना मैं अपनी तरफ से वही का इल्म भी खुद ही छोड़ूंगी, राइट, अब आई विल कम अप विथ समथिंग अबाउट वही एज वेल, राइट, लेट मी कम अप विथ समथिंग, मेरे पास इल्म नहीं है लेकिन मैं कुछ गढ़ लेती हूँ, वही के बारे में भी कोई बात गढ़ लेती हूँ, राइट, फरिश्तों के बारे में भी कोई बात गढ़ लेती हूँ, अपनी तरफ से जो डेंगे मारना की जिसको कहते हैं, ये इन्होंने नहीं किया, बल्कि अपनी कम इल्मी को इन्होंने तस्लीम किया और जिसके पास इल्म था उसको इज्जत दी, उसको मुकाम दिया, और अपने शौहर को इल्म वाले के पास लेके गई। देखिए कितनी सारी इसके अंदर नसीहत की बातें हमारे लिए, खैरख्वाही की बातें, समझने की और अमल करने की बातें, चंद अल्फाज के अंदर में आप, ठीक है, कि भाई खुद नहीं पता हो तो ऊपर से बक बक करने की जरूरत नहीं है, तस्लीम कर लो भाई तुम्हें इल्म नहीं है, ठीक है, और जो इल्म वाला है उसके पास जाओ, उससे पूछो, फसअलू अहले जिक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अपनी तरफ से क्यों हाँकना शुरू कर देती हो, ठीक है, हदीयतुल कुबरा रजाताना ने अपनी तरफ से हाँकना शुरू नहीं कर दिया, राइट? ठीक है, लेकिन जो चीज थी उसका इस्तेमाल किया, ठीक है। ये भी नहीं कहा कि नहीं, मैं तो आई एम नथिंग, मैं तो कुछ नहीं हूं, तो मैं तो चुप रहूंगी। भाई है आपके पास अखलाक है, आपने जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की खूबियां देखी हैं, वो बयान कीजिए। वो अम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस, और जो नेमतें हैं तुम्हारे रब की तो उनको बयान करो। तो नबी अलैहिस्सलाम, तुम्हारे पास नेमत है उनको बयान करो, तो उन्होंने बयान किया, ठीक है। और जो नहीं था वो बयान नहीं किया। बहुत कॉमन सेंस की बात है, लेकिन हमारे जो है ना वो बस दिमाग में आ जाए, अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो आगे फरमाते हैं कि अगर बीवी खाविंद के मसले को शेयर करे और ताउन करे, तो खाविंद अपनी बीवी के साथ मोहब्बत का ताल्लुक क्यों नहीं रखेगा। चुनाचे खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी अलैहिस्सलाम के दिल में अपनी इतनी मोहब्बत पैदा कर ली थी कि वो दुनिया से फौत भी हो गई, मगर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको याद फरमाया करते थे, ठीक है। उन्होंने कोई मोहब्बत पैदा नहीं करी थी। ये जो हजरत ने लिखा है ना, इसका भी अलग मतलब है। यह हजरत ने जो अपने बयान में फरमाया था, इसका भी मतलब अलग है। दिल के अंदर मोहब्बत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह पैदा नहीं कर सकती। कोई इंसान किसी के दिल में अपनी मोहब्बत या अपनी नफरत पैदा नहीं कर सकता, ये अल्लाह करता है, ठीक है, ये अल्लाह करता है। खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मारूफ काम किया, नेकी का काम किया, अल्लाह ताला ने उसका अजर उनको दिया कि उनके शौहर के दिल में उनकी मोहब्बत पैदा की। ये खुद से नहीं पैदा हो जाती है, ये अल्लाह पैदा करता है, और ना कोई इंसान के बस में है कि वो किसी दूसरे के दिल में अपनी मोहब्बत को पैदा कर सके, ठीक है। तो बातें होती हैं मुहावरतन, तो बहुत सारी बातें कह देते हैं, और हमने पहले भी ये बात कही है कि भाई हजरत के पास तो 1 घंटा था ना ये बयान करने का, हमारे पास तो अलहमदुल्ला कोई घंटों की कैद नहीं है, हम तो जितना टाइम लगा सकते हैं उसके ऊपर लगाएंगे। तो इस वजह से एक एक लफ्ज के ऊपर फिर 5 मिनट, 10 10 मिनट लगे, आधा घंटा लगे। तो खाविंद अपनी बीबी के साथ मोहब्बत का ताल्लुक क्यों नहीं रखे? भाई जब मोहब्बत अल्लाह ने डाल दी, तो फिर अब मोहब्बत को तो इजहार होगा ना, ठीक है। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने इजहार किया, चुनाचे खदीजतुल कुबरा तआला फौत भी हो गई। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाया करती थी कि मा गिरतु अदम रातिन अला इमरातिन मा गिरतु अला खदीजता मिन कसरते जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयाहा, कि मुझे कभी किसी पर इतना रश्क नहीं आता था। गिरतु, वैसे तो उसका मुझे कभी गैरत नहीं आती थी, यानी लेकिन उर्दू में बा मुहावरा इसका तर्जुमा, मुझे कभी रंक नहीं आता, किसी के ऊपर इतना रश नहीं आता था जितना खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर आता था, क्योंकि उनकी वफात हो चुकी थी और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम उनको याद किया करते थे, ठीक है। तक एक खातून आई, उनकी आवाज आई, नबी अलैहिस्सलाम उनकी आवाज, क्या खदीजा आई, नहीं खदीजतुल कुबरा तआला की बहन थी वो, तो उनकी आवाज जो है वो अपनी बहन के आवाज के साथ मिलती थी, ठीक है। तो ऐसा याद रहता था नबी अलैहिस्सलाम खदीजतुल कुबरा तआला का साथ, ठीक है। तो एक नुक्ता जहन में रखें कि नो रोड इज लॉन्ग विद गुड कंपनी, ठीक है, यानी साथी अच्छा हो तो कोई रास्ता लंबा नहीं होता है, अगर साथी अच्छा हो, ठीक है। अगर अच्छा साथ हो तो सफर की लंबाई नजर नहीं आती। इसी तरह खाविंद के साथ अगर अच्छा ताल्लुक है, तो फिर जिंदगी का सफर बीवी को लंबा नजर नहीं आता, ठीक है। तो खाविंद के साथ ताल्लुक को अच्छा बना करके रखें, फिर जिंदगी का सफर बीवी को लंबा नजर नहीं आता। औरत को इस पर बहुत मेहनत करनी चाहिए कि खाविंद के साथ उसका ताल्लुक अच्छा। अल्लाह ताला नेक बीवियों को जजाए खैर अता फरमाए। सारा उसका अपना भी अल्हम्दुलिल्लाह यही मामला है कि शादी के शुरू ही दिनों से ना, ये जो लफ्ज पढ़ा ना यहाँ पे, नो रोड इज लॉन्ग विद गुड कंपनी, मुझे याद आया कि हर थोड़े दिन के बाद बहाना बना के चलो बेगम लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। तो पहले अमेरिका में रहते थे, वहां पे एक लॉन्ग ड्राइव की जगह थी शहर के अंदर ही, लेक शोर ड्राइव कहते थे उसको, तो बहाने बहाने से जो है लेक शोर ड्राइव पे, ये लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। तो वो लॉन्ग ड्राइव क्या थी, कोई खास लॉन्ग भी नहीं थी उस वहां पे, लेकिन दिल चाहता था कि ये बैठ करके ना ऐसे बस। तो भाई बीवी के साथ अच्छा तालमेल हो तो फिर ऐसे सफर भी जो होते हैं वो आसान हो जाते हैं। लंबे लंबे जो है वो 900 मील लंबे जो है वो सफर, वो भी आसान हो जाया करते थे। और अब जब सऊदी अरब आने के बाद 800 900 मील के जो हरम के सफर होते हैं, मदीना मुनव्वरा 840 किलोमीटर दूर है और जो है वो मक्का मुकरमा 900 किलोमीटर दूर है, तो वो सफर भी आसान हो जाते हैं। इंसान बोर नहीं होता, इंसान को उलझन उलझन नहीं होती, थकावट नहीं महसूस होती, ठीक है, अगर हम सफर अच्छे, ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कुछ बीवियां ऐसी भी होती हैं, ठीक है, अल्लाह ना करे आप में से कोई ऐसी भी हो, और अगर है तो उसको तौबा करनी चाहिए, कि जो कि बैठी तो वो साइड में होती हैं लेकिन उनका बस ना चले कि खाविंद से जो है ना वो स्टेयरिंग छीन करके अपने पास रख लें, लेकिन वो करती भी नहीं है ये काम। खुद भी जो है वो डराने चलान गाड़ी ड्राइव करने से जो है वो डरती है, या उसकी जो थकावट होती है उसको अवॉइड करने की कोशिश करती है, तो इस वजह से ड्राइव नहीं करती, लेकिन बराबर में बैठ करके खाविंद को ड्राइव कर रही होती है। हर लम्हे जो है ना कोई तनकीद, हर लम्हे कोई ना कोई मसला, तुम्हें तो ये करना नहीं आता, तुम्हें तो वो करना नहीं आता, और वो खाविंद जो है वो भी उनके टेंशन की वजह से जो है ना वो उल्टी सीधी हरकतें भी कर रहा होता है, फिर उनके खौफ की वजह से, उनके दहशत की वजह से, उनके चीख चिल्ला की जो है ना वो शोर को की वजह से खाविंद का भी दिमाग जो है वो माउफ हुआ हुआ होता है। ऐसी भी बीवियां मौजूद है दुनिया के अंदर, आप इनमें से तो नहीं है ना इंशाल्लाह, ठीक है, तो गाड़ी में साइड में बैठा करें ना तो जरा सा चुप कर रोजा रखने की कोशिश किया करें, या मुंह के अंदर वो तावीज डाल लिया करें, चुप का तावीज जो है ना, तो कागज को रोल करके मुंह में डाल लेने से फिर सारी मुश्किलें हल हो जाती है ना, तावीज सुना है ना, तो उसको जो है ना मुंह में डाल करके फिर गाड़ी में बैठा करें, अगर गाड़ी में आपके साथ मसला होता है। अच्छा ये तो हो गया आविंद के साथ, ठीक है भाई। अब जितना बातें अल्लाह ताला ने आपके सामने खुलवा दी हैं, पहले तो हजरत जी रहमतुल्ला अलैह के जुबान से मानो मुबारक से खुलवाई, ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो इस फकीर बेतदबीर की जुबान से, ठीक है, जो तफसीलात आपके सामने खुलवाई, तो अब इससे ज्यादा और क्या इल्म चाहिए। खाविंद के साथ ताल्लुक बेहतर बनाने के लिए इससे ज्यादा आपको और क्या इल्म चाहिए। अभी भी कोई जो है वो अपने ताल्लुक को बेहतर ना बनाए या कम से कम कोशिश ना करे, तो अब उसके ऊपर क्या करें अब, ठीक है, अब अगर उसके बाद भी जो है वो यही चीजें उल्टी सीधी जो है वो आकर के पूछे, यही बातें बार बार, तो फिर उसको सर खाना ना कहा जाए तो और क्या कहा ठीक है ना। तो भाई अल्लाह ताला ने तो, ये हमने कुछ नहीं किया, मैंने तो क्या करना था, इवन मेरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने भी कुछ नहीं किया, जो किया वो अल्लाह ने किया और करवाया अपने बंदे से, ठीक है ना, आप तक जो इल्म पहुंचा है ना ये अल्लाह ताला ने पहुंचाया है, और अल्लाह ताला ही जानता है और वो सब कुछ जानता है कि अब आप इस इल्म के ऊपर कितना अमल करेंगे, ठीक है, ये मैं नहीं जानता, ये हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह अपनी कब्र में बैठ करके ये सब नहीं जानते, वो आलिमुल गैब नहीं है, ना नबी अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब थे, ना हजरत जी आप आलिमुल गैब है, और ये फकीर तो वैसे अंधा है, ठीक है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना वो आलिमुल गैब भी है और वो बीना भी है, वो अलीम भी है, वो खबीर भी है, वो सब जानता है किसने कितना सुना, राइट, किस तक कितना उसने इल्म पहुंचा दिया है और अब वो उस इल्म के साथ क्या कर रही है, ठीक है, तो याद रखें कि वो अल्लाह जो है ना वो जिंदा है और वो अब जैसे जैसे आपको देखेगा वैसे वैसे आपके साथ मामला भी उसी वक्त होता चला जाएगा, ठीक है, अगर आप इस इल्म को फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगी अपनी इस्लाह के लिए इस्तेमाल करेंगी, उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद आपके पास आनी शुरू होगी। कयामत के दिन नहीं आएगी, कब्र में नहीं आएगी, उसी वक्त आनी शुरू हो जाएगी। और अगर आप इस इल्म की नाकदरी करेंगी, इसको सुनी अनसुनी कर देंगी, इसको भुला देंगी, इसको कम अहम समझना शुरू कर देंगी, उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की पकड़ आनी शुरू हो जाएगी, उसी वक्त पकड़ आनी शुरू। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी वक्त आपको देख रहा है। ये नहीं है कि आपकी वीडियो बन रही है, बाद में अल्लाह ताला को टाइम मिलेगा तो वो देखेगा, और जब टाइम मिलेगा तो देखेगा, उसके बाद फिर आपके साथ मामला करेगा। नो, दिस इज नॉट सम शेख, दिस इज नॉट सम इंसान, दिस इज नॉट सम जिन, दिस इज नॉट सम फरिश्ता। वी आर टॉकिंग अबाउट अल्लाह, राइट? अल्लाह अभी भी देख रहा है, अभी भी सुन रहा है, और जब अमल का वक्त आएगा उस वक्त भी वही देख रहा होगा और वही सुन रहा होगा, और वही जो है ना वो उसका नतीजा भी उसी वक्त देगा, उसी वक्त देगा। आपको नजर नहीं आएगा लेकिन वो दे रहा होगा। तो इतनी ज्यादा तफसीली तौर पर हुज्जत तमाम कर देना, अब इसके बाद जो है ना वो हमारे लिए फायदे ही फायदे हैं। बस अमल की नियत कर लें, अल्लाह ताला से मदद मांग लें और अमल की नियत रख लें, ठीक है ना? अमल करना भी इतना जरूरी नहीं है जितना अमल की नियत करना जरूरी है, इरादा करना जरूरी, ठीक है? मदद इरादे पर ही आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर इसके खिलाफ सोचा, इसकी नाकदरी करी, तो फिर अन्ना अजाबिल शदीद, ठीक है? ये हम नहीं बता बता रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कुरान अजीम शान के अंदर लिखा है, और ये सिर्फ 1400 साल पहले वाले नेक मुसलमानों के लिए नहीं लिखा था कि जी अब तो हम कमजोर हो गए तो अब जो है ना वो हमारे साथ ऐसा मामला नहीं होता। नहीं, कुरान मजीद तो कयामत तक के लिए है ना, कयामत तक इंसानों के लिए। ये सिर्फ सहाबा के लिए को थोड़ी था कि ला इन शकर तुम ला अजीदन्नकुम वला इन कफर तुम इन्ना अजाबिल शदीद। सहाबा के साथ ये मामला होता, अब जो है ये उसूल खत्म हो गया है, क्योंकि अब जो है वो दूर हो गई, बहुत दूरी हो गई है, नबी अलैहिस्सलाम का जमाना गुजरे हुए दूरी हो गई है, कातुल रिजाल का दौर आ गया है, गुनाह बहुत आम हो गए हैं, तो अब ये उसूल खत्म कर दिया गया। अल्लाह ताला ने अब इस उसूल को खत्म कर दिया? नहीं भाई, अल्लाह ताला ने अपने कुरान को महफूज रखा, इसीलिए महफूज रखा कि ये हम सब के लिए है और ये हमारी आगे वाली नस्लों के लिए भी है, ठीक है? कुरान मजीद जो है वो इन उसूलों का ही नाम है, किस्से कहानियों की किताब का नाम खाली नहीं है, बल्कि किस्से कहानियों की किताब का तो नाम है ही नहीं, है ही इन सारे उसूलों का नाम, ठीक है? अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको इस इल्म से फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए, हमारे लिए इनके ऊपर अमल करना अल्लाह ताला आसान है, हमारे बस में भी नहीं है कि हम अमल को अपने लिए आसान करें, अल्लाह के बस में सब कुछ है, ठीक है? तो ये हो गई सावन के साथ ताल्लुक के ऊपर कुछ बातें, और अब जो है वो अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह ससुराल के साथ ताल्लुक के ऊपर बातें शुरू करेंगे। कोई सवाल हो या कमेंट हो वो आप पूछ लीजिए, अभी वरना टाइम खत्म हो गया, तो आगे आगे क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम।